मेरी जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो, मेरी जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो। रफ्तार रफ्तार इसको रफ्तार में लिए हो, मेरी जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो। सकेंगे अब हमको ये अंधेरे हरगिज न छल सकेंगे, ये रोशनी फलक से हम पे जब किए हो, मेरी जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो।
जब गुरु के आश्रम में पहुंचता है तो गुरु कहीं बाहर गए होते हैं और गुरु का ऋषि पुत्र वहां बैठा होता है, तो वो अपनी आपबीती उस ऋषि पुत्र को कहते हैं और वो तपस्वी कुमार कहता है, चाहे पाप कितना भी बड़ा हो परंतु राम के नाम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े पातक विकर्म और पाप धुल जाएंगे, तुम केवल 3 बार राम का नाम लो तो तुम्हारा ये जो पाप हुआ है ये मिट जाएगा। और इतना कहकर वो राजा को वहां से विदाई देता है। जब गुरु वापस घर आते हैं आश्रम में और उन्हें ये पता चलता है कि मेरे बेटे ने ये किया, तो अपने बेटे पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उसको कहते हैं, तुमने ये कहा ही कैसे कि 3 बार राम का नाम लेने से बड़ा पाप धुल जाएगा, ये तुम्हारे निश्चय की कमी है। 1 बार ही नाम का राम लेना पर्याप्त है, तुमने 3 बार कहा, इसका मतलब अभी भी तुम्हें पूर्ण विश्वास, पूर्ण निश्चय, पूर्ण फेथ नहीं है। और वो ऋषि उस ऋषि पुत्र को शाप दे देता है कि अगले जन्म में तुम नाविक बन जाओगे, केवट शूद्र जाति के बन जाओगे और राम स्वयं आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। और रावण रामायण में दिखाया है कि केवट राम को अपनी नाव में बिठा कर ले जाता है। और जब उस किनारे पहुंचते हैं तो राम कहते हैं कि तुम्हारा कितना भाड़ा हुआ, तो वो कहता है तुम आए घाट हमारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तुम इस घाट पर आए जिसका मैं केवट हूं, मैं खिवैया हूं, एक दिन हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार कराए ओ राम, मैं तो इस गंगा का केवट हूं, इस नदी का केवट हूं, तुम भवसागर के केवट हो, जब हम तुम्हारे घाट पर आएंगे तब तुम हमको पार लगाना इस जन्म मृत्यु के, इस भवसागर के पार कर देना। तो ये कथा थी निश्चय की। इतना निश्चय, इतना विश्वास, इतना फेथ उस एक में कि हृदय की आर्त पुकार अंतरतम से निकला हुआ एक आवाज जन्म जन्म के विकर्म पाप भस्म कर देगा। दूसरा एक प्रसंग है विभीषण एक व्यक्ति को एक पुड़िया देता है और कहता है कि जब तक ये पुड़िया तुम्हारे हाथ में होगी तुम आराम से लंका से भारत की ओर जा सकोगे पानी पर चलकर। तो वो व्यक्ति पुड़िया लेता है और चुपचाप चलने लगता है और देखता है पानी पर चल रहा है, बीच में चलते चलते उसको लगता है आखिर इस पुड़िया में है क्या, कुछ तो होगा, और पुड़िया खोलता है और देखता है उसमें राम का नाम लिखा है और कहता है बस केवल राम का नाम, और जैसे ही खोलता है और जैसे ही पढ़ता है डूब जाता है। निश्चय एक में निश्चय, मेरी जिंदगी की कश्ती उस पार लिए हो, रफ्ता रफ्ता इसको रफ्तार में लिए चले हो, अब हमको ये अंधेरे हरगिज न चल सकेंगे। माया कैसी है, धोखेबाज, ये रोशनी फलक से हम पे जो किए हो, मेरी जिंदगी की कश्ती उस पार लिए चले हो। साथ एक ही सब कुछ, एक में सब समाया हुआ, सारा विस्तार एक में, एक कहना, क्या कहा बाबा ने, बहुत सहज है, याद करना सहज है, लिखना सहज है, और क्या सहज है, एक एक याद करना, लिखना, सीखना, सिखाना, पढ़ना, सब कुछ सहज है। एक के पाठ को पक्का करो, एक के हिसाब को पक्का करो, यही ज्ञान का सार है। तो एक के बाबा ने बहुत सही बातें कल बताई थी, वो एक एक बात हम विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे। तो कौन किसको देख रहा था, कल की अव्यक्तवाणी, किन बच्चों को देखा बाबा ने, किन बच्चों को देखा, सहज योगी और सहयोगी बच्चों को देखा। स्वयं स्वयं को देखना है, क्या मैं सहज योगी हूं और सहयोगी हूं। सहज योगी, सुबह कहा कोई विरले ही श्रीमत पर चलते हैं। माया ने बुद्धि को क्या कर दिया है, डेड कर दिया है, मृतवत, बेसमझ बना दिया है। संसार की आत्माएं बाप को जानती नहीं, क्या है वो, ऑर्फन। तो बाबा किसको देख रहे, सहज योगी को, जिनका योग एक से है, अटेंशन, मन मना भाव, सावधान, ऐसे सहयोगी जो है, ऐसे जो सहयोगी है, सहयोगी किस किस बात में सहयोग, इसका चिंतन करना है। ब्राह्मण विघ्न विनाशक, साथी विघ्न विनाशक, यज्ञ विघ्न विनाशक, ये तीन सर्टिफिकेट लो, किसी मुरली में बाबा ने कहा था। कौन से सर्टिफिकेट, स्वयं विघ्न विनाशक, साथी विघ्न विनाशक, और ये यज्ञ विघ्न विनाशक। एक एक आत्मा विघ्न विनाशक। तो मैं सहज योगी आत्मा हूं, और कौन सी आत्मा हूं, सहयोगी आत्मा हूं। और इस मुरली में बाबा ने एक के हिसाब बताए हैं, ऐसे 16 हिसाब बताए हैं, एक के हिसाब, एक का हिसाब। सबसे पहला, एक बल, एक भरोसा। एक ही बल, एक ही, एक ही हमारा सामर्थ्य, एक ही हमारी शक्ति। कोई देहधारी हमारा बल नहीं, कोई देहधारी हमारा सामर्थ्य नहीं, एक ही बल है और एक पर ही भरोसा है। संसार की आत्माओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, आज कुछ तो कल कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ, बोलते कुछ करते कुछ, करनी कुछ कथनी कुछ। एक ही बल और एक ही भरोसा, ऐसा निश्चय, ऐसा विश्वास, ऐसा प्यार एक से। एक बहन ने अभी अभी हमको एक अनुभव सुनाया था, जो कि सेवा केंद्र पर रहने वाली बहन है। उसने कहा था कि एक बार जब वो विदेश गई थी और वहां मौन भट्टी या इस तरह की भट्टी चल रही थी, तो एक बार बाबा की याद में वो बहन इतनी मगन थी, इतनी मगन थी कि याद में चले जा रही है, और बीच में एक दलदल आ गया और उसे पता ही नहीं चला और वो दलदल में गिर गई। पहले पैरों तक उसमें धंसती गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, वो अकेली बहन और उस दलदल में अंदर अंदर डूबी जा रही है। एकदम से उसने बाबा को याद किया और जैसे संपूर्ण समर्पण कर दिया और कोई संकल्प ही नहीं, परंतु वो धीरे धीरे नीचे नीचे धंसती चली जा रही है, घुटनों तक, फिर कमर तक, और वो अंदर ही अंदर जा रही है, अंदर ही अंदर जा रही है। और वो एकदम जैसे याद में खो गई और बाबा से बात करने लगी कि मेरा जीवन आपके लिए है और यदि ये जीवन अब समाप्त हो रहा है तो जैसी आपकी इच्छा। और कमर से भी ऊपर तक अंदर 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 बस, और आसपास कोई भी नहीं। और थोड़े देर में ऐसा हुआ कि जैसे वो बेहोश सी हो गई और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा वो दलदल से बाहर थी और आसपास कोई भी नहीं था। उसने कहा ये अनुभव मैंने किसी को नहीं बताया और पूछ रही थी कि ऐसे अनुभव बताने चाहिए। बाबा की गुप्त मदद। अदृश्य शक्ति आत्मा को बांध लेती है, सपोर्ट करती है। तो सबसे पहला एक का हिसाब है, एक ही बल और एक ही भरोसा। जब तक देहधारियों का भरोसा है और देहधारियों की याद है तब तक उसकी मदद नहीं मिलती। जब संसार की याद खो जाए तब उसकी याद आती है। वो दिखाया है भागवत में, एक भगत रास्ते से जा रहा है भगवान के गुणगान करते और लोग उसका विरोध कर रहे और कुछ लोगों ने पत्थर उठा लिए उसको मारने के लिए, और वो एकदम से याद करता है हे कृष्ण। तो उधर वैकुंठ में उसकी आवाज पहुंचती है और कृष्ण वहां पर भोजन कर रहे हैं, परंतु जैसे ही भगत की आवाज आई बिना चप्पल पहने निकल पड़ते हैं, पर थोड़ी देर के बाद वापस आ जाते हैं। तो वो रुक्मिणी पूछती है क्या हुआ, अभी अभी तो कह रहे थे आपकी एक भगत पुकार रहा है। वो कहता है कि मैं तो जा रहा था उसको बचाने पर जब देखा तो उसने खुद ही पत्थर उठा लिया था, तो मैं लौट कर आ गया। संपूर्ण समर्पण, तन मन धन बुद्धि संस्कार कर्म, कर्म के फल, सात प्रकार का समर्पण। तो सबसे पहला हिसाब है एक बल और एक ही भरोसा। शक्तिहीन यदि अनुभव हो रहा है तो शायद शक्तिशाली से योग नहीं है, माया दुस्तर है। बाबा ने कहा सुबह अजगर है, धोखेबाज है, परंतु जो मन मना भाव है और जो सावधान है वो सेफ है, जो धारणाओं पर है वो सेफ है, जो श्रीमत पर है वो सेफ है, जो यज्ञ के किले के अंदर है वो सेफ है, जो मर्यादा की लकीर के अंदर है वो सेफ है। तो सबसे पहले इस निश्चय को फिर से स्मृति में लाना है। बाबा ने कहा है कल की मुरली में, अंतर्मुक्ता की भट्टी में बैठो। कौन सी भट्टी में? अंतर्मुक्ता की। और रस्सी कौन सी हो? दृढ़ संकल्प की रस्सी से बांध लो। ये क्या है? रॉयल सजा दो अपने आप को, ज्ञान की सजा, योग की सजा, धारणा की सजा और सेवा की सजा। यदि कोई कर्मचारी अलबेला होता है तो ये 8-16 पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट पर एक एक दिन की भट्टी हो सकती है, एक एक बात पर एक एक घंटे का चिंतन या उससे भी अधिक। तो सबसे पहला एक बल और एक भरोसा, स्वयं को देखना है, स्वयं के फेथ को टेस्ट करना है, चेक करना है कि क्या वास्तव में एक ही पर भरोसा है। आज की मुरली में कहा, तुम क्यों बोझ उठाते हो, बाप बैठा है। दूसरा है एक मत, एक के हिसाब में दूसरा एक का हिसाब है, एक मत। यदि कहीं मुझते हो तो क्या कहा आज सुबह की मुरली में, बाप से पूछो। और सबसे अच्छा पूछने का टाइम कौन सा है, जब संसार के लोग सोए रहते हैं, तुम तार चिट्ठी या टेलीफोन, धीरे धीरे आवाज और क्लियर होता जाएगा, भविष्यवाणी है स्मार्टफोन के बारे में, धीरे धीरे आवाज और क्लियर होता जाएगा, तो फोन पे पूछ सकते हो। जब संसार सोया रहता है तब तुम जागो। जो संसार के लिए रात है वो तुम्हारे लिए दिन है, गीता में लिखा है। तो एक मत, उसकी मत बुद्धि में धारण करने के लिए, उसकी मत समझने के लिए बुद्धि स्वच्छ चाहिए, प्लेन बुद्धि चाहिए, समर्पण बुद्धि चाहिए, जो बुद्धि उसके सामने ठहर जाए और उसकी मत उसमें धारण हो, ताकि अब तक जो संसार की आत्माओं की मतें थी वो सब हट जाए, जो संसार की आत्माओं के विचार थे वो दूर हो जाए, जो संसार की आत्माओं के विचार थे उनको हम जज कर सके कि ये राइट है या ये राइट है। तो एक की मत, उसी से पूछना है क्या है, क्योंकि जब समझ में नहीं आता है तो क्या होता है, कल की मुरली ऑस्ट्रेलिया से मुलाकात, जब किसी बात को नहीं समझते हो तो क्या होता है, क्या होता है, क्या और क्यों आता है, और जब क्या और क्यों आता है तब माया के गेट खुलते हैं, इसलिए डबल लॉक लगाओ। इसके लिए बातों को समझना, परिस्थितियों को समझना, व्यक्तियों को समझना, बाबा ने कहा है आप जहां रहते हो उसकी आसपास जो भी आत्माएं हैं उसके आसपास उन आत्माओं को भी समझना है, उनके स्वभाव को, उनके संस्कार को, जिनके साथ रहना है, चाहे घर, सेवा केंद्र, ऑफिस, मधुबन, किसी डिपार्टमेंट, कोई भी महकमा हो, आसपास के पत्तों को जानो, बातों को समझो, तो फिर क्या क्यों नहीं होगा, और क्या क्यों नहीं होगा तो माया नहीं होगी, फिर माया का गेट नहीं खुलेगा। तो एक मत, उस एक की क्या मत है, एक मत, तुम्हारी मत, माय मत, ये नहीं है, मेरी मत, तुम्हारी मत, माय ओपिनियन, योर ओपिनियन नहीं, माय वे, योर वे नहीं, द वे। बाइबल में लिखा आई एम द वे, द ट्रुथ एंड लाइफ। ये मत पूछो कि मार्ग तुम्हारा क्या है, मेरा क्या है, आई एम द वे, मैं ही मार्ग हूं, द वे, द ट्रुथ एंड लाइफ, एक ही मार्ग है जो वो कह रहा है, और उसने जो कहा वो राइट और बाकी सब रॉन्ग। सुबह की मुरली राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि तुमको मिली है, जो विवेक तुमको मिला है, तो एक कीमत क्या है और मेरे लिए एक कीमत क्या है, इसके लिए अमृत वेला जितना अभी कर रहे हैं उससे दुगुना शक्तिशाली वो हो जाए। तब उसकी मत मेरे लिए क्या है, मेरे लिए व्यक्तिगत क्या डायरेक्शंस है, मुझे वर्तमान में क्या करना है, ये सेवाएं हो रही है पर क्या यही पर्याप्त है, क्या यही सब कुछ है, क्या इसके अतिरिक्त भी और कुछ करना बाकी है? उसकी मत को समझना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ये दूसरा, तीसरा एक रस। पहला एक बल, एक भरोसा, दूसरा एक मत, और तीसरा एक रस। एक रस किस किस में? किस किस में एक रस? स्थिति में एक रस, दिनचर्या में एक रस, भावनाओं में एक रस। एक रस शब्द के तीन अर्थ है। एक रस अर्थात समान, अचल, अडोल, हिलने वाले नहीं, बिल्कुल एक रस स्थिति। एक रस का दूसरा अर्थ है एक में सारे रस, और तीसरा निगेटिव अर्थ है मोनोटोनस, उबने वाला, उबाने वाला, वो भी एक अर्थ है एक रस का। वही 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 वही। तो पहले जो दो अर्थ है उसको बाबा हमेशा प्रयोग करते हैं। एक रस अर्थात एक में सारे रस, एक रस अर्थात समान, अप डाउन नहीं, नीचे ऊपर नहीं, हलचल वाली नहीं। चंचल घर तुम्हारा यादगार नहीं, अचल घर तुम्हारा यादगार है। और एक रस किस में? श्रीमत में एक रस। और एक रस किस में? दिनचर्या में, मर्यादाओं में, और भोजन। वो सबसे मुश्किल है, भोजन में भी एक रस। इंद्रियों को उत्तेजित ना करे, ऐसा एक रस। और सेवा में एक रस, धारणाओं में एक रस, योग में एक रस, स्थिति में एक रस, अमृत वेला में एक रस, मुरली चिंतन में एक रस। तो एक रस, और दूसरा अर्थ एक में सारे रस, एक में ही सारी खुशी, एक में ही सारा आनंद, एक में ही अतीन्द्रिय सुख, एक से ही सब कुछ। तो ये तीन 16 बातें हैं, 16 बातों पर 16 घंटे की पट्टी हो सकती है। अंतर्मुक्ता की भट्टी, अंतर्मुक्ता की आदत, अंतर्मुक्ता का अभ्यास करो, ये सजा स्वयं को देनी है। तो पहले ये तीन, उसके बाद में चौथा एक के गुणगान गाना, एक के ही महिमा करना। रामायण में और एक उदाहरण है, श्री राम एक तालाब के पास पहुंचते हैं और अपना धनुष जमीन पर गाड़ते हैं और राम लक्ष्मण अंदर जाते हैं पानी पीकर वापस आते तो देखते हैं जहां धनुष गड़ा हुआ है वहां से खून आ रहा है। तो वहां पर खोदते हैं जमीन को लक्ष्मण, तो पाता एक मेंढक है जिसके सीने में वो धनुष गड़ गया है और खून। लक्ष्मण उस मेंढक से पूछता है कि तुमको जब अजगर खा लेता है तब तो तुम बहुत चिल्लाते हो, आवाज करते हो बचाओ बचाओ, अब क्यों नहीं आवाज की? हमने तुम्हें बचाने का प्रयत्न किया होता। तो वो मेंढक कहता है जब मुझे अजगर खा जाता है तो मैं चिल्लाता हूं हे राम हे राम हे राम। अभी तो बचाने वाला ही मार रहा है तो वो मुझे प्रेम से स्वीकार है। भक्ति मार्ग में ऐसा समर्पण है कि जो कुछ वो करे, जाई विधि राखी राम ताई विधि रही है, होई सोई जो राम रचि राखा, सब कुछ स्वीकार है। जहां वो रखे, जैसे वो रखे, जो वो खिलाए, जो वो पहनाए, तेरे फूलों से भी प्यार तो कांटों से भी प्यार, हर चीज से प्यार। तो एक के गुणगान, जब सब मिल रहा है तब भी और जब नहीं मिल रहा है तब भी एक ही का गुणगान, ये चौथा एक का गुणगान करना। पांचवा एक से सर्व संबंध, एक से सर्व संबंध और नए नए संबंध। मराठी भाषा में एक गीत है, तू भेटना रे रोज रोज नव्याने, तू भेटना रे रोज रोज नव्याने, तू हर दिन नए नए रूप में मिली, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ तो कभी कुछ, हर दिन नए रूप में आके मिलना, वही वही रूप में नहीं मिलो। प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि तू रोज रोज नए नए रूप में आकर मुझसे मिल, कभी ऐसे मिल, कभी वैसे मिल, कभी ये मिल, कभी वो मिल। तो रोज रोज नए नए संबंध, नए नए संबंधों की अनुभूति। केवल तोता रटन नहीं करना है, तुम बाप भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु, काम पूरा भी है। नेक्स्ट, फिर वो हुआ, फिर तुम ज्ञान के सागर हो, प्रेम के सागर हो, आनंद के सागर हो, फिर वो पूरा हुआ, फिर नेक्स्ट, फिर तुम सदगति दाता हो, तुम माया के छुड़ाने वाले हो, और तुम आए हो, वो पूरा हुआ। आज की मुरली में एक वाक्य है, मैं आत्मा हूं, आप ज्ञान के सागर हो, बाबा बस मैं आपकी ही राह पर चलूंगा, इन्वर्टेड कॉमा, मैं आत्मा हूं, आप ज्ञान के सागर हो, फुल स्टॉप, बाबा कॉमा बस मैं आपकी ही राह पर चलूंगा। कितना अच्छा वाक्य है मुरली में। तो नए नए रूप से उसको देखना, नए नए संबंधों का अनुभव करना, तू ये भी है, तू वो भी है, तू ऐसा भी है, तू वैसा भी है। तो हर संबंध की अनुभूति। छठवां कंपनी, साथ का अनुभव। मैं चल रहा हूं तो मेरे संग संग चलते बाबा, मैं जा रहा हूं मेरे साथ साथ वो जा रहा है, मैं जा रहा हूं, कुरान में हदीस में बार बार आता है कि मोहम्मद पैगंबर जब वो छोटे से है और वो कारवा जा रहा है, दूर से एक व्यक्ति देखता है कि इस कारवा के ऊपर बादलों की परछाई चल रही है और वो सारे लोग उसके पास आते हैं, दावत में बैठते हैं, भोजन करते हैं, तो वो व्यक्ति ध्यान से देखता है कि कौन ऐसा है इनमें से जो थोड़ा अलग है, और ये परछाई जो बादल चल रहे थे किसके लिए चल रहे थे, तो देखता है इनमें से तो कोई भी नहीं है, सारे बड़े वहां बैठे होते हैं। फिर थोड़ी देर में एक छोटा बच्चा भाग के आता है और वहां बैठता है और एकदम से उसको लगता है कि यही है वो जो कि मोहम्मद पैगंबर है। तो ये दिखाया है कि कुरान के नाजिल होने से पहले ही उसके जीवन में बचपन से ही जैसे उस खुदा की रहमत इनायत थी, वो जहां जहां चलता था ऊपर बादल चलते थे क्योंकि रेगिस्तान की तपती धूप थी। तो जहां मैं हूं वहां वो है छत्र छाया, तो वो मेरे साथ साथ चल रहा है, उसकी कंपनी का अनुभव, द डिवाइन कंपनी ऑफ गॉड। उसके बाद में सातवां, एक परिवार, बाप के परिवार का एक लक्ष्य, सभी का एक ही लक्ष्य है यहां पर। क्या लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, डबल विदेशियों से मुलाकात, देवताई चोला क्या करे तुमको आह्वान कर रहा है। जब तुम्हारे संकल्प इमर्ज होंगे, इमर्ज रूप में रहेंगे, तब देवताई सृष्टि भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। कितने सुंदर शब्द है। जब तुम्हारे वो संस्कार, देवताई संस्कार इमर्ज रूप में रहेंगे, तब देवताई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। जब ये इमर्ज होगा तब वो इमर्ज होगा। वो संस्कार गैप है, बहुत बड़ी दूरी है, फासला है 5000 वर्ष का। उसको मिटाना है, उन संस्कारों को इमर्ज करना। कैसे इमर्ज करेंगे? सतयुग के बारे में सोचकर, ज्ञान बढ़ाकर, विजुअलाइजेशन कर, चिंतन कर, इस संसार से कंट्रास्ट करते हुए, समान का अभ्यास से, रूहानी ड्रिल के अभ्यास से और योग निद्रा से, उस सतयुगी सृष्टि के संस्कार को इमर्ज करना है। वो एक बार इमर्ज हो गए फिर पाप असंभव है, फिर अपवित्रता असंभव है। आज की मुरली में बाबा ने शादी की परिभाषा दी है, वो पुरुषार्थ जिससे पवित्र पौधे अपवित्र बनते हैं। और कौन सी परिभाषा दी है? वो सेरेमनी जिससे विष सागर में डूबते हैं। ये दो पावरफुल डेफिनेशन दी है मैरिज की। वो महापुरुषार्थ जिससे पवित्र पौधे अपवित्र बन जाते हैं। वो सेरेमनी जिससे विशेष सागर में डूबते हैं आत्माएं। कितना खर्च करते हैं। तो कौन सी पॉइंट चल रही थी? लक्ष्य एक, अपने लक्ष्य को बार बार आंखों के सामने लाना है। क्योंकि लक्ष्य अगर विस्मृत हो गया तो पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। यदि किसी ने आज ही लक्ष्य रखा कि कल का अमृत वेला सबसे शक्तिशाली होगा आज तक के ब्राह्मण जीवन में का, तो जैसा लक्ष्य होगा वैसे स्वतः लक्षण आएंगे। फिर रात में लेट नहीं सोएंगे, फिर रात में जल्दी सोएंगे, फिर रात में वो सब चीजें नहीं करेंगे जो कि श्रीमद् के विरुद्ध है। फिर सोने की विधि ही कुछ अलग होगी। तो सातवां है एक लक्ष्य, आठवां एक लक्षण। सबसे पहले लक्ष्य को निर्धारित करना है। बहुत ऊंचा लक्ष्य हो, बहुत ऊंचा। इंग्लिश में कहावत है, नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। असफलता नहीं, अपराध नहीं है असफलता, परंतु छोटा लक्ष्य रखना अपराध है। इसके लिए लक्ष्य कैसा हो? बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। जो केवल ये सोचता है मुझे पास होना है, फेल हो जाता है। जो सोचता है मैं फर्स्ट आऊंगा, वो कम से कम 5 के अंदर तो आएगा। जो सोचता है मैं फर्स्ट आऊंगा, कम से कम डिस्टिंक्शन में तो आएगा। जो सोचता है फर्स्ट डिवीजन में आएगा, वो फर्स्ट सेकंड डिवीजन में आएगा कम से कम। और जो सोचता है केवल पास होना है, तो फेल होना निश्चित है। इसके लिए लक्ष्य कैसा रखना है? टॉप, बहुत ऊंचा लक्ष्य। तो एक लक्ष्य सातवां, आठवां एक लक्षण, नौवां सर्व के प्रति एक शुभ श्रेष्ठ भावना से देखना सबको। ब्राह्मण आत्माएं संसार के प्रति, अज्ञानी आत्माओं के प्रति बहुत शुभकामना है कि वो ज्ञान में आ जाए, पर जो ज्ञान में चल रहे हैं उनके प्रति थोड़ी कम शुभकामना है। भूकंप आया, योग में बैठे और सकाश, परंतु डिपार्टमेंट में ही भूकंप चल रहा है, उसका क्या? यदि हर एक अपने आप को चेक करे तो शायद ये पता चले कि शुभ भावना का स्टॉक कम है। हमारे जो इमोशंस है, इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन, वो इमोशन की परिभाषा है। वो जो एनर्जी इन मोशन है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है तो वो डिवोशन बनती है, निगेटिव है तो वो कमोशन बनती है। कमोशन अर्थात बवाल, पवोशन अर्थात हलचल, कमोशन। पॉजिटिव है तो डिवोशन अर्थात प्रार्थना, ये इमोशन के लिए कहा गया है। तो आसपास की जो आत्मा है, इर्द गिर्द जो आत्मा है, चाहे कैसी भी है, सभी पुरुषार्थी है। आज का सभी को रिस्पेक्ट दो, वरदान में है ना? निंदा करने वाले मित्र, सम्मान, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। पहले कहा जाता था बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, और अभी छोटे प्यार से राजी नहीं होते, छोटों को भी क्या चाहिए, वो भी डबल। सम्मान तो एक से एक सबके प्रति शुभ भावना है, और दूसरा बताया सभी को एक शुभ श्रेष्ठ कामना से उड़ाना, ऊंचा उठाना, खुद भी उड़ना और दूसरों को भी उड़ाना। दूसरों को उड़ाने की विधि है स्वयं उड़ना। पहले जो खुद ही नीचे है वो दूसरों को ऊपर नहीं कर सकता, स्वयं की स्थिति को स्वयं उठा देना। तो तुम्हारे इर्द गिर्द जितनी आत्माएं हैं, घर में, सेंटर में, ऑफिस में, अपने आप वो ऊपर उठेगी। पर अगर हम निरंतर ये सोच रहे हैं कि इनकी स्थिति नीचे क्यों है, मुझे इनको ऊपर करना है, तो उनके साथ हम भी नीचे नीचे जाएंगे। उनसे डिटैच होकर स्वयं की स्थिति को ऊपर कर दो तो वो स्वतः ही ऊपर आ जाएंगे। तो एक लक्ष्य, एक लक्षण, सबके प्रति शुभ श्रेष्ठ कामना से देखना, और अगला उड़ाना। उसके बाद में अगला, एक बाप ही संसार। कई बार हमने ये सुना है परंतु अनुभव कितना किया है? क्या हमारा अनुभव वैसा ही है जैसे एक मछली का, जिसके लिए वो समुद्र वो संसार है? और यदि वो मछली सागर से बाहर आ जाए तो क्या होगा? तड़पती है। क्या ऐसी खींच, लगन आज बांधेलियों को बाबा ने याद किया? नींद फिट जाती है उनके लिए सोचते सोचते। तो ऐसी लगन, एक को संसार बनाना, अर्थात सब कुछ उसमें, सब कुछ उससे, सब कुछ उसके लिए। फिर जो देहधारी है और देहधारियों का जो जमावड़ा, जो भीड़ है, उसको एक तरफ, एक को संसार बनाने का अभ्यास, अमृत वेला बैठना और बाबा से कहना कि तुम ही संसार हो और तुम्हारे अतिरिक्त जो कुछ है सब व्यर्थ, और तुम्हारे अतिरिक्त जो कुछ है उन सब को आई रिजेक्ट। वैराग भाव लाना है बाकी सभी बातों से। तो एक बाप में ही संसार। अगला, एक में ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव। एक से ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव, एक बाप से ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव। सब कुछ उसी से मिल रहा है, अब भी और बाद में भी। फिर से रामायण का एक उदाहरण है, लंका राम ने जीत ली और राम अब जा रहे, कहते हैं विभीषण को तुम देखो लंका को। विभीषण कहता है मुझे आप चाहिए, लंका नहीं चाहिए, मैं भी आपके साथ आ रहा हूं। राम कहते हैं नो, तुम लंका को संभालो। वो कहता है मुझे आपको पाने के बाद मैं और क्या पाऊं। वो कहता है लोग पूछेंगे ना तुमने मेरी इतनी भक्ति की तो तुमको रिटर्न में मिला क्या, इसके लिए ये लंका तुम संभालो, उदाहरण के लिए कि तुमको ये मिला, मेरे से प्यार किया तो ये मिला प्राप्ति, एक से सर्व प्राप्ति, अब भी और बाद में भी। जब तुम निधन के बन जाते हो तो मैं धनी आता हूं। सुबह की मुरली क्या करने, वर्षा देने, तो आया है ऑल अटेंडेंट्स फ्रॉम वन फादर। तो सारे प्राप्तियां एक से, अगला आंख खुलते ही एक बाप, आंख खुलते ही एक बाप। इसका कैसा अभ्यास करेंगे, अमृत वेला आंख खुलते ही देखना भगवान सामने खड़ा है, जिसकी दिनचर्या की शुरुआत ही भगवान के दर्शन से होती है उसका दिन कितना श्रेष्ठ, कितना शुभ, कितना कल्याणकारी होगा, उसके कर्तव्य कितने, उसके कर्म कितने ऊंचे होंगे। सुबह की मुरली में कुछ कुछ बच्चे कैसे कर्तव्य करते हैं, विनाशकारी कल्याण, विनाशकारी कर्तव्य करते हैं। कुछ कुछ फरकत ही देने के पुरुषार्थ करते हैं, ये नहीं करना है तुमको। तो आंख खुलते ही सबसे पहला संकल्प क्या हो, भगवान सामने है। आंख खुलते ही मिस कॉल कितने हैं और मैसेज कितने हैं, वो ना हो। पहला संकल्प, दिनचर्या का पहला संकल्प पूरे दिन को प्रभावित करेगा। फर्स्ट थॉट, भगवान आया है, सम्मुख खड़ा है। उसके पहले का दिन कितना ही काला क्यों ना हो, जो हुआ वो हुआ, अब नया संकल्प कि भगवान सम्मुख है। फिर उसके बाद में चौदहवा, एक बाप साथी कंपेनियन। पहले बताया था साथ कंपनी, अभी दिनचर्या हर कार्य किसके साथ, एक साथी के साथ, उसको कंपेनियन बनाना, साथी बनाना, उसके साथ साथ चलना, उसको साथी बनाकर हर जगह पर अकेले नहीं जाना, क्या सोचना वो मेरे साथ है, यहीं कहीं आसपास आते नजर नहीं पर मेरे आसपास हो, साथ साथ चल रहा है, छत्र छाया उसके ऊपर, ऊपर से किरणें आ रही है, मैं उन किरणों के नीचे हर जगह पर हूं, मैं अकेला नहीं, सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां मेरे साथ साथ चल रही है, ज्ञान की अथाह संपदा मेरे साथ साथ चल रही है, गुण और शक्तियां साथ साथ चल रही है, ये संकल्प। तो चौदहवा साथी, पंद्रहवा, पंद्रहवा सबसे इंपॉर्टेंट है, दिनचर्या के सारे काम पूरे किए, कर्मयोग पूरा हुआ, अभी रात को सोने का समय है। कहां सो जाओ, स्नेह की गोद में सो जाओ, लव में लीन होकर सो जाओ। हर व्यक्ति कैसे सोता है इस पर बहुत कुछ निर्भर है। एक विधि है योग निद्रा, सिंपल शब्दों में योग निद्रा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प करना सोते सोते, और विजुलाइज करना, मानस चित्र बनाना श्रेष्ठ संकल्पों का, शवासन में लेट जाना, शरीर को शिथिल कर देना, चेतना को शरीर में दौड़ाना, एक एक अंग शिथिल, उसके बाद में श्रेष्ठ संकल्प, महान संकल्प, स्वमान के संकल्प, और उनको देखना और योग करते 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 सो जाना। क्योंकि सोने का जो समय है, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन बहुत ज्यादा एक्टिव है। जो जो संकल्प दिए जाएंगे सोते समय, बहुत शक्तिशाली संकल्प होंगे। जैसे ये बेड है, ऐसे सात पहरेदार तैनात करने हैं। एक यहां सिर के पास सिराने, एक इधर, एक बीच में, एक इधर बीच में, एक यहां और एक यहां। सात शक्तिशाली संकल्प, ऐसे संकल्प जो शरीर और संसार से डिटैच करते। उदाहरण, मैं ब्रह्मलोक का वासी हूं, यहां का हूं ही नहीं। डबल विदेशियों से मुलाकात, किसको याद करो? स्वीट होम और स्वदेश को याद करो। ये परदेश है, ये माया का देश है, यहां माया का प्रभाव है। इसके लिए प्रकृति भी माया के अधीन है। तुम प्रकृति जीत, जब माया जीत बन जाओगे, तब वो दुनिया, वो सत्वप्रधान दुनिया, वो सुनहरी दुनिया आएगी। मैं ब्रह्मलोक का वासी हूं, मैं बेहद का वैरागी हूं। एक दूसरा पहरेदार, मैं नष्टो मोह हूं, मैं मोहजीत हूं। किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई मोह नहीं। मैं बेहद का सन्यासी हूं, बेहद का सन्यास धारण किया हुआ है। ऐसे कुछ शक्तिशाली संकल्प, साक्षी दृष्टा हूं, सब कुछ दर्शक होकर देखने वाला, यहां की कोई चीज मुझे प्रभावित नहीं करती, सब कुछ दर्शक, मैं दर्शक हूं, देख रहा हूं। आंखें वीडियो कैमरा बन जाए, कान रिकॉर्डर बन जाए, और टेस्ट टंग सेंसर, वो कोई अपना ओपिनियन नहीं देते, जो है वो है साक्षी दृष्टा। जैसे ये कैमरा देख रहा है खाली, या कह रहा है तुम ठीक से बड़ा जरा बोलो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक है, कुछ बोल रहा है ये कैमरा? कुछ भी नहीं बोल रहा है, मूक है, मूक दृष्टा है, जो है वो देखता है बस, इंटरफियर नहीं करता है। तो सोते समय इतना स्वयं को शरीर से, इतना स्वयं को इस संसार से डिटैच कर देना है। आज का है सुबह की मुरली में, ठंडी में सांप क्या करता है? खाल छोड़ता है, तो ठंडी चल रही है। साक्षी, मैं साक्षी दृष्टा हूं, मैं उपराम हूं, मैं इस संसार का वासी नहीं हूं। ये ऐसे शक्तिशाली अपने बिस्तर के सात जगह पर पहरेदार खड़े कर देने, ताकि कोई कुस्वप्न, विकार का स्वप्न, पाप का स्वप्न, स्वप्न दोष न होगा, स्वप्न होश होगा। तो ये है 15वां। अभी लास्ट 16वां, 16वां है एक में, अनेक में एक को देखना। दिनचर्या में कर्म करते हुए, सब कुछ करते हुए, ब्राह्मणों के संपर्क में आते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, इस परिवार की आत्माओं के संपर्क में आते हुए, अनेक में एक को देखना। तो ऐसी है 16, एक के हिसाब से। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहला, एक बल एक भरोसा। दूसरा, एक मत। तीसरा, एक रस। चौथा, एक के ही गुणगान गाते रहना, एक का स्तवन। भक्ति मार्ग में कहते हैं प्रभु स्तवन, एक की प्रशंसा, एक का स्तवन, यूलोजाइज द लॉर्ड। उसके बाद में एक से सर्व संबंध, उसके बाद में एक का साथ, उसके बाद में एक परिवार में एक लक्ष्य, फिर एक परिवार में एक लक्षण, उसके बाद में सबके प्रति श्रेष्ठ शुभ भावना से देखना, उसके बाद में सबको श्रेष्ठ शुभ भावना से ऊंचा उठाना और उसके बाद में एक ही संसार और फिर एक ही सर्वप्राप्तिया और फिर एक ही साथी और फिर आंख खोलते ही बाबा एक ही साथी, उसके बाद रात को सोते समय स्नेह की गोद में सो जाना और उसके बाद लास्ट अनेक में एक को देखना, ऐसे स्नेह में लवलीन आत्माओं को प्रीत, ऐसे लगन में मगन बाप के मीत मीत आत्माओं को, उसके बाद में गीत एक के गीत गाने वाली आत्माओं को और एक की रीत निभाने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रीत मीत गीत प्रीत आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ट्रैफिक कंट्रोल होगा उसके बाद 15 मिनट सबको शक्तिशाली योग करना है। जिनको एकदम अर्जेंट है वो जा सकते हैं, जो 16 बातें बताई उसमें एक एक पॉइंट में स्थित होते जाना है और शक्तिशाली योग करना है। ओम शांति।